गौर और फिक्र कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका तरीका बताती हूँ। क्या आप और मैं दिन में कम से कम 5 से 10 दफा अनयूजल हालात से दो चार नहीं होते? मतलब हंडिया जल गई, दूध उबल गया, गाड़ी बिल्कुल ऐसी जगह जाके लगी कि टक्कर होते हुए बची। जब जिंदगी में कुछ भी हो तो चंद सेकंड सोचिए कि ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, इस वक्त ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैं कह दे कि मुझे भी खांसी आएगी ना, अगर अल्लाह चाहेगा तो आएगी, और अल्लाह करे ना ही आए आज, ठीक है। मुझे खांसी क्यों आई? आप 10 बातें कहेंगे, आपका गला खुश्क है, आप तकलीफ़ में, आप सफ़र में, आप बोल रही हैं ये वो है। नहीं, मेरा गौर व फिक्र मुझे क्या कहता है, मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने इस ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकाल दिया जिसकी सज़ा में अब मुझे अल्लाह ताला इस मुश्किल में डाल रहा है। कुरान का असूल है, वमा असाबकुम मिन मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो तकलीफ़ भी पहुंचती है अपने हाथों के किए धरे से पहुंचती है। अब आप और मैं जब भी कोई ऐसा बोल बोल लेते हैं, अल्लाह हमारे गले में कोई तकलीफ़ डालता है। हम एक बड़ा बोल बोलते हैं, और मैं अब बोलूँगी तो आप देखेंगे सब समझ जाएंगे। कुछ सिस्टर्स को बड़ा मान होता है, कहती ये काम, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, 20 लोगों की बिरयानी बनानी तो कोई बात ही नहीं, उसी दिन बिरयानी ढीली होगी, फिर आप शर्मिंदा होंगे, हाय रोज़ तो इतनी अच्छी पकती है, आज दोस्तों में लेके जानी थी तो ये हो गया, क्यों आप ये बड़ी बात क्यों करके हैं। याद रखिए, हमारा हर लफ्ज़ एक सवारी है जिस पे सवार होकर हमें या तो जन्नत की तरफ जाना है या जहन्नम की तरफ। अल्लाह ताला कहते हैं, फमे यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा, जिसने एक ज़र्रा बराबर भी अमल किया उसको भी देखेगा, खैर कह तो भी और शर कह तो भी। तो ज़्यादा बोलने का नुकसान क्या होता है? इंसान फिर बहुत अपनी बातें करने लगता है। अक्सर लोग पहले अपनी बातें करते हैं, फिर अपने बच्चों की करते हैं, फिर बच्चों के बच्चों की करते हैं। दूसरे लोग बोर हो रहे होते हैं, चिढ़ रहे होते हैं उनकी बातों से, लेकिन वो बैठे हैं तारीफ़ें कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि दुनिया में हमारे बच्चों से अच्छे बच्चे किसी के नहीं, और हमारे पोतों दोतों से अच्छे कोई और है नहीं है। इससे नुकसान क्या होता है कि आप दूसरों की नज़रों से गिर जाते हैं। इसकी बजाय कायनात पे गौर करें। अब सवाल पैदा होता है, किस चीज़ पे गौर करें इंसान, क्योंकि गौर व फिक्र इबादत है। मैं अक्सर सोचती हूँ इससे आसान इबादत कोई नहीं है। कैसे? ना वजू करना पड़ता है, ना चलना फिरता है, ना रुकू सजदा क्याम, क्योंकि इबादत की 3 ही किस्में ना, माली माल लगता है, बदनी जिस्मानी, जिसमें हमारा जिस्म लगता है, कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। गौर व फिक्र एक ऐसी इबादत है कि जिसमें कुछ भी नहीं लगता। आप बैठे या तो अपने दुखों पे गौर व फिक्र कर लीजिए, या आप अल्लाह की कायनात पे देखिए। अल्लाह सुबहान तआला ने तो हम सबको सूरत ज़ारियात में इस बात की भी दावत दी है कि वफ़ी अनफुसिकुम, तुम्हारी तो अपनी ज़ात में बहुत सारी निशानी है। चलिए छोटी सी बात हर एक अपने ऊपर लेकर सोचे, आपकी ज़िंदगी में आज तक क्या हुआ, जिसको आप तजुर्बे कहती हैं, जिसको आप माजी कहती हैं, या जिसको आप गम कहती हैं, क्या क्या हुआ सोचिए। ज़ाहिर है कि जिसकी उम्र ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा वाक़ियात होंगे, जो अभी यंग हैं 15-16 साल के उनके वाक़ियात भी कम होंगे। आपके हर मामले के पीछे अल्लाह की रहमत से कोई सबक था, कुछ था, अल्लाह ने आपसे कुछ लेना था। बस दफ़ा आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मैं तो कहती हूँ बस दफ़ा आप बड़ी जन्नत मांग लेते हैं और अल्लाह खुश होकर कहते हैं दे दो, बट आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होते, तब अल्लाह ने अदल भी करना है, फिर अल्लाह आपको किसी ही मुश्किल में डालता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सूरत तौहा में अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि मूसा हमने आपको खूब आजमाया, व फतन्नाक फतूना, फिर जब आप हमारे मुकर्रर करदा मेयार पे पूरे उतरे तो फिर हमने आपको नबूवत दे दी। तो ज़िंदगी में बहुत सारे हालात की चक्कियों से बंदे को अल्लाह इसलिए पिसवाता है कि वो किसी काम का हो जाए। जैसे कहते हैं, बेलने में डाले बगैर रस नहीं निकलता। पहले दौर के लोग अपने बच्चों और बच्चियों की स्पेशली तरबियत में ये असूल रखते थे, कहते थे बेटी हैं ना उनको घड़ो, रोटी को झाड़ते हैं ना खूब पतली करो, खूब झाड़ लो, क्यों कल ज़िंदगी के हालात कैसे होंगे नहीं पता। बहुत लाड प्यार में पली हुई बच्चियाँ बाज दफ़ा ससुराल में जाकर, चंद फैक्ट्स होते हैं, रियलिटी होती है, उसमें कोई जुल्म नहीं होता, लेकिन वो रियलिटी के फैक्ट्स होते हैं उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाती, परेशान हो जाती हैं। तो ज़िंदगी में गौर व फिक्र कीजिए, तदब्बुर कीजिए, और इस साल रमज़ान के दौरान आपने हर दिन, मैं आपकी सवाबदीद पे छोड़ती हूँ, कितना वक्त आप स्पेयर कर सकते हैं? गौर फिक्र के लिए रखिए। और दिल की बसीरत का खुलना, बारीक बीनी से हालात और वाकयात को देखना, इसको तफक्कुर कहते हैं। जो आपकी ज़िंदगी के लाइफ टाइम इश्यूज़ चल रहे हैं उसमें दिल का गौर फिक्र, ये है तफक्कुर। और आप देखेंगे कि इसके ज़रिए बंदा अल्लाह तक भी पहुँच जाता है, और इसके ज़रिए इंसान फ़लसफ़े की तहों में ऐसा घुसता है कि खुदा का इनकार भी कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में जो चीज़ हमें सीरत से मिलती है कि नबूवत मिलने से पहले जो चीज़ आपके अंदर आपके इर्द गिर्द वाले देखना शुरू हो गए थे, वो गौर व फिक्र की आदत थी। घंटों गौर व फिक्र करते, गारे हिरा में चले जाते। उस वक़्त तो कोई नमाज रोज़ा भी फ़र्ज़ नहीं था, क्या करते थे? गौर व फिक्र करते थे, तदब्बुर करते थे, ये क्या है, अल्लाह आसमान क्यों बनाया, ज़मीन क्यों बनाई, कैसे बनाया। फिर आप देखिए कि गौर व फिक्र किस चीज़ पे किया जाए। चंद चीज़ें स्टेप्स में रखती हूँ। सबसे पहले तो जो आयत पढ़ी है, आयातिम बैजिनात, सबसे खूबसूरत तदब्बुर कुरान की आयतों पे। इवन गौर से समझिएगा, इवन अल्लाह की हस्ती के बारे में गौर व फिक्र भी ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के कलाम पे गौर व फिक्र करो। हदीस में आता है कि अल्लाह के बारे में ज़्यादा ना सवाल जवाब करो, क्योंकि फिर एक वक्त आएगा कि शैतान आकर कहेगा, ये बताओ तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। अल्लाह की ज़ात के बारे में बात करनी बहुत पसंदीदा नहीं है, बस कह दें कि लैस कमिस्लिही शैयन वहुवस समीउल अलीम, उसकी तो मिसाल जैसा भी कोई नहीं है, वो तो समीउन अलीम है। नहीं, तफक्कुर किस में करना है? कुरान की आयतों में। 6000 से ज़ायद आयतें हैं कुरान में। अगर आप हर रोज़ एक आयत पर गौर करें, पूरी ज़िंदगी आपकी लग जाएगी कुरान पे। गौर व फिक्र ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ़ एक आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए। अब कैसे करेंगे गौर? चले मैं आपको सूरह फातिहा पे थोड़ा सा बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो रब है आलमीन का। आपके सारी तारीफ़ें, कैसी तारीफ़ें, और बल्कि सारे शुक्र भी, सारी तारीफ़ें सारे शुक्र अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है। अच्छा, तारीफ़ क्या होती है? अच्छा, मैं किस किस की तारीफ़ करती हूँ? अच्छा, आप जब सोचेंगे ना सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तो गौर व फिक्र आपका आएगा सामने, क्या फिर मैं फ़लाँ की क्यों कर रही थी, फिर मैं उसकी क्यों करती हूँ। और यकीन कीजिए, दिन में 17 बार कम अज़ कम हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़, लेकिन हमारी तारीफ़ें लोगों की। और उस वक्त तो इंसान को आ आती है कि किसी के गुनाह की काम पर आप उसकी तारीफ़ करें। बहुत प्यारा कॉल है, किसी का खुलासा बता देती हूँ। किसी फासिक की तारीफ़ करना, वो गुनाह कर रहा है, डिसोबीडियंट, ना फरमान, अल्लाह की बात ना मानने वाला, कोई ऐसा हाल हुलिया है, किसी ने कोई ऐसा काम किया जिस पे अल्लाह को गुस्सा आ रहा है, फरिश्तों को गुस्सा आ रहा है, और आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या डैशिंग, क्या वाजिबा, क्या गज़ब की लग रही हैं आप। ये एक जुमला बाज़फ़ा बंदे के लिए बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा क़यामत के दिन। तो सोचें, मैंने किसकी तारीफ़ करनी है, किसकी नहीं करनी, कब करनी है, कब नहीं करनी। आप कहते हैं इससे कोई फ़ायदा होगा, वल्लाह ही आपकी इबादत है। आप सोचिए, किसी की तारीफ़ करूँगी, मसलन मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, मेरा टॉपिक ये नहीं है, ना मुझे ऐसी टॉपिक से यानी बात करना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन मिसाल है कि एक औरत खूब बनी ठनी। अब एक औरत बन ठन सकती है, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकती, नो प्रॉब्लम, बट वो गलती से अपने आप को छुपाना भूल गई। मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, खूब माशाल्लाह उन्होंने सिंगार किया। अब वो ऐसे हाल हुलिए में कि एक दफ़ा तो नज़र पड़ती है, किसी पार्टी का मिसाल ले लीजिए, दावत ले लीजिए, शादी ले ले, जो चाहे, वो बेचारी हो सकता है 2-3 घंटे की एफर्ट के बाद इस हाल हुलिए में आए। तसव्वुर में लाइए, एक हॉल में जाती हैं, वहाँ सब है, केयर ही ख़त्म होगी, कौन मर्द है कौन औरत। कोई एक भी उसकी तारीफ़ नहीं करता। सच बताए उसका दिल क्या कहेगा, खुशी होगी? और तारीफ़ आपने इसलिए नहीं करनी कि इस वक्त इसकी तारीफ़ करके हम इसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, कल और करेंगी, और मैंने इसकी तारीफ़ कर दी और ये कल फिर करेंगी तो मैं इसमें हिस्सेदार हो गई, तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सारी तारीफ़ अल्लाह की है ना, इसी तरह अल्लाह के काम करने, अल्लाह की रज़ा के साथ जीने वालों की तारीफ़ है। इसी के बिलमुकाबिल कोई अच्छा काम करता है। नमाज का वक्त हो गया मगरिब का, शादी हॉल में सब बैठे थे, एक उठा और उधर से उठाओ भी नमाज़ पढ़े। जब उठ के दूसरों को दावत देकर जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा। अब कुछ लोग अपना गिल्ट दूर करने के लिए, अरे नहीं ऐसे थोड़ी नमाज़ होती है, अब कैसे पढ़ें, वुज़ू नहीं है, या तो मर्द हैं या तो कपड़े ठीक नहीं, घर जाके पढ़ेंगे, तो इस आर की वजह से कई लोग उठते ही नहीं हैं। और मुझे खुद एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, किसी के घर बहुत ही अपनी प्यारी साथी थी, तो किसी की वजह से जो उन्होंने बुला लिया, बैठे हैं तो बैठे हैं तो बैठे हैं। मैं तो गई बिल्कुल एंड पे, सिर्फ मिलने गई थी, तो खैर मैंने देखा लोग 2 घंटे से पहले से बैठे थे, सब बैठे हैं बैठे हैं। एग्जैक्टली आप देखिए कि 5 मिनट कम थे अभी मगरब पे, तो एक आवाज़ लगी, खाना खुल गया। कि मैं उस दिन से ये चीज़ कई बार सोच चुकी हूँ, ऐसे लग रहा था, हालांकि पर्पसली नहीं ऐसा किया होगा, केयर ही नहीं थी, हाल अंदर का ऐसा, बाहर रोशनी है, अंधेरा है, बर्फ़ है, गर्मी, किसी को नहीं पता, अंदर तो एक सुरूर छाया हुआ है। उनके स्केड्यूल के मुताबिक अब सारे मेहमान आ गए होंगे, खाना रेडी हो गया, चूँकि नमाज हमारी प्रायोरिटी पर रही नहीं, तो उन्होंने एकदम अनाउंस किया कि जी खाना खोल गया, खाना खा लें। और मैंने उनको मिलकर वापस जाना था, क्योंकि मेरे घर में किसी का रोज़ा था, तो मैं सिर्फ इस नियत से मिलने आई कि मिलकर चली जाऊँगी। तो मैंने देखा कि उन्होंने खाना खोला है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। ये तो वो वक्त है जिस वक्त सबको मस्जिद जाना चाहिए, मैं तो अपने घर में होती तो मुझे उससे पहले ही 15 मिनट शोर पड़ चुका होता कि मस्जिद जा रहे हैं, नमाज़ पढ़नी है, ये करना है। खैर किस्सा मुख्तसर करते कराते मुझे ये था कि वहाँ से निकलूँगी तो नमाज़ निकल जाएगी। मैंने उन सिस्टर से कहा कि नमाज़ की जगह की तरह, उन्होंने कहा भी था नमाज़ की जगह है, मैंने कहा सिस्टर मैं निकलूँगी लेकिन मैं पहले फ़र्ज़ पढ़ूँगी, तो नमाज़ की जगह की तरह। अब वो एकदम उनको ना जैसे आए परेशान सी हो गई, उससे पूछ उधर पूछती हूँ, बाद में मुझे कहने लगी कि वो ऊपर है। मैंने कहा और भी खुश होगी, मैंने कहा नीचे का माहौल ऐसा है, हो सकता है कि उनको लग रहा होगा तो ऊपर है। तो मेरे साथ जो साथी थे मैंने कहा आए नमाज़ पढ़ते, मैं जा रही हूँ पढ़ने, मैंने कहा नहीं, बस मैंने बताया कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैं क्या सोच के गई, लेकिन वहाँ बिल्कुल उलट था, पुराना सा स्टोर जिधर बची कुची चीज़ें थी, उन्होंने 2-3 जाए नमाज डाल दिए, और यकीन करें शायद 800-900 लोग होंगे इससे भी ज़्यादा, तो उसमें से शायद ही 1 या 2-4 लोग उठ के आए होंगे। और मैंने वहाँ तक जाने के दौरान कई बातें कानों में लोगों की सुनी, नहीं आप यहाँ नमाज कैसे पढ़ें, ये तो मुश्किल है, और आराम से बैठे हैं। तो गौर व फिक्र की आदत आपको ये सिखाती है कि नमाज के वक्त पे अगर आप खाना खाने लग गए तो ये छत गिर सकती है, अल्लाह की ज़मीन हिल सकती है, जलजला आ सकता है, ये होता है गौर व फिक्र। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लम के दौर में अगर हम में से कोई गुनाह करता तो उसको ऐसे लगता था कि ये गुनाह एक पहाड़ है दूर, और ये अपनी जगह से उठेगा और आके तुम्हारे सर पे मुअल्लक होगा। वाक़ आपने कुरान में पढ़ा हुआ है, वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, बनी इसराइल के सर पे वाकई अल्लाह ने पहाड़ खड़ा करके तौबा कराई थी कि तौबा करते हो वरना ये पहाड़ तुम्हारे सर पे गिरा दूंगा। कि मोमिन को गुनाह करना इतना बड़ा पहाड़ लगता है कि गोया के वो उसके नीचे दब जाएगा, और मुनाफिक का हाल क्या, बड़ा सा गुनाह करके नाक पे मक्खी की तरह उड़ा देता है। और ये कौन कह रहे हैं, अनस जो आखिरी सहाबी थे। हज़रत अनस के ऊपर दौरे सहाबियत पूरा हुआ, मतलब अल्लाह के नबी सल्लम की दुआ थी कि आप की लंबी उम्र की दुआ की थी आपने ना, तो अल्लाह ने उनकी पूरी की। इतना करीब का दौर है नबी सल्लम का, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम गुनाह को अपने ऊपर पहाड़ समझते थे, लेकिन आज के लोग जो हैं वो गुनाह को नाक पे मक्खी समझ रहे हैं। अल्लाह रहम करे अगर आज के दौर में कोई सहाबी आ जाए, सच बताइए आज हमने गुनाहों को नाक की मक्खियाँ तो छोड़िए अपने लिए लाजमी कर लिया। पहले दौर का गुनाह क्या था कि लोग गुनाह करते थे फिर शर्माते थे, गुनाहों को छुपाते थे, गुनाहों पे शर्मिंदा होते थे, गुनाह करके रातों को रोते थे। आज इल्ला माशाल्लाह कहानी क्या हो गई कि हम गुनाह करके इतराते हैं। सबसे बड़ा आज के दौर का जो मैं कह सकती हूँ कि फोबिया है ना, आज साबित करना चाहते हैं कि ये गुनाह ही नहीं, ये आज के दौर का तकाजा, यानी गुनाह करके ना डरना ये निफाक की अलामत है, ये फिसक की अलामत है। इस चीज़ में आने के बाद समझ लीजिए कि बीमारी हद से बढ़ गई, तकलीफ हद से बढ़ गई। जब आप और मैं अपनी ज़िंदगी में इस किस्म का वक्त ले आएँ तो उस वक़्त सोचने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र की ज़रूरत है, तदब्बुर की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। चलिए मैं 3 सेकंड खामोश रहती हूँ, आप गौर व फिक्र कीजिए, क्योंकि ये भी सिखाने वाली चीज़ है। मैं जब गुनाह कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरी कैफियत क्या होती है, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ تھوڑی سی کراس کوشچننگ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے سے منہ بھر کے نہیں بولے، بس دل میں خیال آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی ان کفار سے اتنا کیوں دب رہے ہیں؟ اسلام سچا دین ہے، آپ آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر یہ ان کی حدیبیہ کے مقام پہ جا کے اتنی شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ بس آ کے کہتے اللہ کے نبی آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ ہوں. کہ اسلام آخری دین نہیں ہے تو اللہ کے نبی پھر آپ کیوں دب رہے ہیں؟ عمر خاموش، مجھے تم سے زیادہ پتہ. بس اتنا کوئی کراس کوشچننگ والا انداز تھا. اور جب اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ فتح، تو اللہ کے نبی یہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ کوئی فتح؟ ہم تو مکہ کے دروازے سے واپس جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، یہ تم دب رہے ہیں؟ لیکن ابھی مکہ چھوڑا نہیں ہے، مدینہ کے رستے میں ہے. اور اللہ نے سورۃ فتح نازل کر کے بتا دیا کہ یہ غزوہ صلح حدیبیہ جو تھا، جو ہوا بھی نہیں، یہ پیش خیمہ بن گیا فتح مکہ کا. اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ کبھی فتح نہ ہوتا. عمر کہتے ہیں پھر مجھے اس وقت نبی کی وہ حکمت سمجھ آئی کہ آپ کو وہ بات وقت سے پہلے سمجھ آ رہی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی اس وقت. اب سنیے جو موضوع ہے. عمر کہتے ہیں میں نے اپنے اس گناہ کو دھلوانے کے لیے، اپنے اس جرم کی معافی کے لیے کتنے روزے رکھے، کتنے غلام آزاد کیے، کتنے کفارے دیے کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے کہ میں نے نبی کی رائے سے تھوڑا سا اختلاف کیا. اب آپ پر میں سوچیں، صبح سے شام، میں کل کی بات نہیں کرتی، لاسٹ ویک کی بات نہیں کرتی، لاسٹ منتھ کی بات نہیں کرتی، آج صبح سے لے کے اب تک. دیکھیے بڑی باریک جملہ دوں گی آپ کو انشاءاللہ. بالکل اپنے دامن میں ڈوب کے پا جائیں سراغ زندگی. سوچئے ان 12 گھنٹوں میں میں نے کتنے گناہ کیے، کتنا روئی، کتنا غور کیا، کتنی دفعہ ہاتھوں میں پسینہ آ گیا، کتنی دفعہ ماتھے میں پسینہ آ گیا، کتنی دفعہ پریشان ہوئی کہ ہائے میرے مالک یہ میں نے کر کیا دیا. دیکھیے غور و فکر کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ غور ہوتا ہے، تو پھر دوسری چیز جس پہ آپ غور کریں گے وہ اپنے گناہ. رات کو بستر پہ لیٹنے سے پہلے سوچیے آج کیا کیا گناہ کیے، کبیرہ کتنے، صغیرہ کتنے، عادتاً کتنے، بھول بسرے کتنے، مسٹیکس کتنی، اور ڈھٹائی کے ساتھ کیے ہوئے گناہ کتنے. اتنے گناہ دکھیں گے ہمیں اپنے اوپر کہ ہمیں کسی دوسرے کی ہوش نہیں رہے گی. آپ نے معروف واقعہ سنا ہوگا، اگر ایک ہاتھ بھی کھڑا کر دے تو میں اشارتاً سنا دوں گی دوبارہ. تھوڑا سا غم دی عورت کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سب نے سنا ہوا نہیں سنا ہوا. قبیلہ غامدیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دیکھیے ایک کیس تھا نا، اسی لیے کتابوں میں آ گیا، یہاں تو ہر دن اخباروں کی زینت ایسے واقعات بنتے ہیں. گناہ ہو گیا، جب گناہ ہو گیا کسی بھی حد کے بڑھنے سے ہوا ہوگا نا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے حد والا گناہ ہو گیا، سمجھ گئے کہ حد جس پہ لگنی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے اس کی بات سنی انسنی کی، کیونکہ حکم بھی یہی ہے اپنے گناہوں کو مت کھولو. اور آج کے دور میں تو ہمارے پاس کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے، تو خاموش رہنا بہتر ہے. آپ نے اس کی بات جب سنی انسنی کی تو اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو اب اس کا ثبوت بھی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. جب اس نے خود اقرار جرم کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بچے کا کیا قصور ہے، جب بچہ پیدا ہوگا پھر آنا. روایت میں آتا ہے چند دن کا بچہ لپیٹ کر وہ عورت لاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے حد لگا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، یہاں سے مسئلے بھی اخذ ہو رہے تھے. کہا اس کو دودھ پلا جب روٹی کھانے کے قابل ہوگا پھر لے کر آنا. اور روایت میں آتا ہے چند مہینے کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا ہوا وہ عورت آتی ہے، اللہ کے نبی دیکھیے اب یہ روٹی کھا رہا ہے. کیوں؟ جملہ سنیے گا، اللہ کے نبی گناہ سونے نہیں دے رہا. اگر میں اس حال میں مر گئی تو میرا وہاں کا انجام ہوگا، اس برے انجام سے پہلے مجھے اس دنیا میں پاک کر دیں. یہ ہے غور و فکر. سچ بتائیں بڑے بڑے اونٹ نگل جائیں اور دوسروں کے چھوٹے چھوٹے مچھر چھانکتے رہیں. آج ہمیں ہر ایک گناہ گر لگتا ہے سوائے میں، آئی ایم می، مجھے، مائی مائن، میں بہت نیک ہوں باقی گناہ گار. فلاں کی بیٹی کا سنا، فلاں کا دیکھا، فلاں کا غور کیا، یہ ہے ہماری ٹاکیٹیو بولنا. اگر آپ دیکھیں تو آج ہم تین چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، چپ رہے، خاموشی، کم بولنا، غور و فکر کرنا، اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی فکر کا لگنا. हम दूसरों की बातें करते ही तब है जब हम अपने आप से फारिग हो चुके होते हैं। और अफसोस की बात यह कि आज जितनी सोशलाइजिंग आम हो गई, सोशल मीडिया पे, नेट मीडिया पे, फेसबुक पे, इस पे उस पे, हम इतने मसरूफ हो गए कि हमें होश ही नहीं रही इस बात की कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या काम जो है वो ख़तरों में रखे हुए हैं, रिस्क पे। हम सब तो अपने गुनाहों पे गौर व फिक्र करें और इसी की फिर लंबी लिस्ट तैयार करें। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि रमज़ान में बहुत वक्त होना, अभी नहीं कर रहे ना करें, रमज़ान में करें। किसका दिल तोड़ा मैंने? आप अपने आप से चंद सवाल पूछ के सोएं रात को, आज मैंने किसका दिल तोड़ा? क्या मतलब मैंने कभी तोड़ा? तौबा करे, मैंने तो कभी नहीं तोड़ा। नहीं जी, टूटता है जब आप बहू को चार बातें सुनाती हैं, उसका दिल टूटता है। जब बेचारी दुखी बीमार मासी को आते ही चार जुमले सुनाती हैं, उसका दिल टूटता है। जब वो आपके पास छोटे छोटे बच्चे जो बैठते हैं, जो आके खिदमत करते हैं, आप उनको बुरी भली बात कहती हैं, तो दिल टूटता है। जब ओए करके ड्राइवर को बुलाते हैं, माली बाबा को जो आपसे बाप की उम्र में होगा, उससे सब बदतमीजी करती हैं, दिल टूटता है। हम बातों से लोगों का दिल तोड़ते हैं, रात जाता दिल तोड़ते हैं। वल्लाही हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए कि हमारी वजह से लोगों का दिल टूटता है। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ, मैंने एक इंग्लिश बुक में पढ़ी थी। इमेजिन कीजिए आपका फ्यूनरल है, अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो वक्त आपका और मेरा लिखा हुआ है वो आके रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इमेजिनेशन में लाइए। करेक्टर बिल्डिंग के बारे में एक बुक थी, उसमें से नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन खुलासा क्या था, इसको कहते हैं डेथ बेड थेरेपी। डेथ बेड पे सोचिए आपकी लाश रखी हुई है और जॉक दर जॉक लोग आ रहे हैं, जिसमें आपके अपने आएंगे, आपके घर वाले आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके ससुराल वाले आएंगे, स्कूल्स वाले, आपके कुलीग्स आएंगे, आपके मुलाजिम आएंगे, जिनके साथ आपका कोई ना कोई लेन देन था, वो आएंगे। वहाँ सोचिए कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। थोड़ी सी मिसाल से बात समझाती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लम का दौर है, आपके सामने से एक जनाजा गुजरा, लोगों ने उस औरत की तारीफ की, कुछ ने कहा अल्लाह के नबी नमाज रोज़े में फ़राइज़ की पाबंद थी, नफिल रोज़े ज़्यादा नहीं रखती थी, लेकिन अख्लाक बड़ा प्यारा था और जनरस बड़ी थी। हदीस में जो लफ्ज़ है कि सदका करती थी चाहे पनीर के एक टुकड़े से कर दे। अल्लाह के नबी सल्लम ने उसकी ये बात जब सुनी तो क्या कहा, आपने फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। खैर एक और वक्त था, एक और जनाजा गुजरा, लोगों ने उस औरत की बुराई बयान की, कंजूस बहुत थी और अपने हमसाए को तो बहुत ही दुख देती थी, आपने उस पर भी यही लफ्ज़ बोले वजबत वजबत वजबत। बाद में साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी दोनों जनाजों पे आपने एक ही बात कही, दोनों पे आपका एक ही जुमला था कि वाजिब हो गया, क्या? कहा पहली औरत पर जन्नत वाजिब हो गई और दूसरी पे जहन्नम वाजिब हो गई। कहा क्यों? कहा कि जिसके बाद दूसरों ने उसके बारे में गवाही दे दी अच्छी, वो जन्नती है, और जिसके दुनिया से जाने के बाद भी लोग उसकी बुराई करें तो वो बुरा ही होगा। अब आप और मैं अपने ऊपर लेकर सोचें, जब मैं दुनिया से जाऊंगी, देखिए मुंह दुखाले को तो सारे ही रोते हैं, वो बवें भी रो रही होती हैं जो दिल से कई बातों में बेजार आ चुकी होती हैं, इल्ला माशाल्लाह। दिल से कोई क्या सोचेगा मेरे दुनिया से जाने के बाद? शुक्र है अब घर का माहौल अच्छा होगा, ये हर वक्त की बातें ख़त्म, चलो शुक्र है अब मुझे ताने देने वाला कोई नहीं रहा। या फिर लोग रोएंगे कि हाय अब इनके बाद हमारा क्या बनेगा। आज इस दुनिया में इस बात पे गौर व फिक्र कीजिए कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तदब्बुर कीजिए, गौर कीजिए और अभी से इस्लाह की कोशिश कीजिए। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पे गौर करेंगे ना, आपका दिल खुलता ही जाएगा, दिल खुलता ही जाएगा और आपको एहसास होगा कि वाकई बहुत अच्छी बात है।